नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर सविता स्याल, रेडियो मानव रचना 107.8 पर। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो मानव रचना बहुत से कार्यक्रम आप तक पहुंचाता है, और हमारे कार्यक्रमों की विशेषता होती है कि इनमें विविधता है, इनमें वैरायटी है, और हम जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, और बहुत से ऐसे विषय लेते हैं जो आपके जहन में कई बार कुल बुलाते हैं, लेकिन शायद आप कह नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो मित्रों, आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आपके पास आई हूँ, और उस टॉपिक में मेरे साथ भाग लेने के लिए आपके कम्युनिटी मेंबर्स भी हैं और आरजेज भी हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे दाएं बैठी हैं कामनी सिंह जी, उन्हें तो पंजाबी तड़का तो याद है ना तुहानू। चलो कामनी सिंह जी, आप मुखातिब होइए हमारे श्रोताओं से।
शुक्रिया सविता स्याल जी की, आज आपने मुझे मौका दिया है आपके साथ बैठने का और एक सुंदर सी डिस्कशन करने का, जिसमें कि मैं आज आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस और कुछ जमाने के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिस टॉपिक पर आज आप कहने वाली हैं।
कामनी जी, टॉपिक तो अभी मैंने श्रोताओं को बताया नहीं है, अभी तो ये सीक्रेट है। सबसे पहले हम आपकी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और हम आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक मैं अपने श्रोताओं को थोड़ी देर बाद बताऊंगी
जी।
अभी मैं बताती इस टॉपिक में कौन कौन भाग लेने वाले हैं। कामनी सिंह जी, उन्होंने अपने विषय में आपको बताया, इनको आप अक्सर पंजाबी तड़का प्रोग्राम में सुनते हैं। और मेरे साथ हैं इंदिरा किलम जी, जो आपकी एक कम्युनिटी मेंबर हैं, और हम दोनों साहित्य सागर कार्यक्रम लेके आते हैं आपके पास। इंदिरा जी
नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि सविता जी ने बताया, मेरा नाम इंदिरा किलम है, आपकी कम्युनिटी की एक सदस्य हूँ, और प्रयास करती हूँ अपने विचारों को आपके साथ बांटूं और खुद भी उन्हें समझने परखने का प्रयास करते हैं।
बहुत खूब। और मेरे साथ हैं शीमा फारूकी जी, जो एक आरजे हैं, और आप अक्सर उनके रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं। शीमा जी
आदाब दोस्तों, मैं शीमा फारूकी हूँ, रेडियो मानव रचना में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, और साथ ही साथ कभी कभी आप मुझे कुछ प्रोग्राम्स में भी सुनते हैं, स्पेशली मेरा शो 5 से 6 एहसास में।
जी हाँ, तो देखिए, हम जिस परिचर्चा में भाग लेने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिश्तों का महत्व, यानी रिलेशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं एक व्यक्ति की जिंदगी में। मित्रों, हम और आप चारों ओर रिश्तों के ताने बाने देखते हैं, और बचपन से ही हम बड़े होते हैं और पलते हैं माता पिता और भाई बहनों के साथ साथ, हम पलते हैं अपने चाचा बुआ नाना नानी दादा दादी, इन सब रिश्तों को भी हम बहुत ही बचपन से देखते आते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम कुछ रिश्तों से कट जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं कि क्या रिश्तों का हमारे जीवन में महत्व है, और यदि है तो कितना। तो सबसे पहले चलते हैं कामनी सिंह जी के पास ये जानने के लिए कि कामनी सिंह जी, क्या आज 21वीं सदी में, जबकि मनुष्य के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, मनोरंजन के बहुत साधन हैं, आपका कंप्यूटर है, आपका टीवी है, और आप मॉल्स में घूमने जा सकते हैं, और फेसबुक पे फ्रेंड से बात कर सकते हैं
जी,
मोबाइल तो आपके हाथ में जैसे मुट्ठी में दुनिया आप कह लीजिए मोबाइल के रूप में, तो इतना सब कुछ होते हुए क्या आज भी रिश्तों का महत्व है?
सविता जी, जो आपने आज का टॉपिक लिया है, मुझे लगता है इसके ऊपर हमें ज़रूर डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो इतने एडवांस हो गए हैं कि वो इन रिश्तों पर कुछ धूल सी जमा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग हैं या हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने बखूबी अब तक सभी रिश्ते निभाए हैं, और हम इस 21वीं सदी में आके कभी उन रिश्तों को निभाते हैं कभी भूल जाते हैं
जी।
मुझे ऐसे लगता है कि मैं समय के साथ भाग रही हूँ, चल नहीं रही हूँ, अब भाग रही हूँ कि कुछ रिश्तों को निभा भी लूँ, लेकिन जब उन रिश्तों को मैं नापती या तोलती हूँ कि मेरे साथ क्या दुनिया ने किया, क्या या क्या ज़माने ने किया, तो कुछ सोच में चेंज आता है, और ये रिश्ते, लेकिन मैं ये कहती हूँ, बहुत ज़रूरी हमें निभाने चाहिए।
तो आप मानती हैं कि रिश्तों का आज 21वीं सदी में भी बहुत महत्व है, और इनको हमें महत्व देना चाहिए?
जी बिल्कुल देना चाहिए।
इंदिरा जी चलते हैं इंदिरा किलम जी के पास। इंदिरा जी, आप क्या कहेंगी कि कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में रिश्ते कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, या सिर्फ सुख दुख में ही रिश्तेदार आपस में इकट्ठे होते हैं? नहीं तो हमारे पास, हम इतने मशीनों में उलझे हुए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है रिश्तेदारों के विषय में जानने का, या रिश्तेदारों से कभी बातचीत करने जाएं या उनको मिलने जाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगी?
सविता जी, मैं जीवन के 60 बसंत पार कर चुकी हूँ
जी।
जन्म संयुक्त परिवार में हुआ और आसपास सभी खिले हुए रिश्ते मैंने अपने जीवन में जिए हैं।
क्या बात
है? वास्तव में अपनी इस जीवन यात्रा में हर पड़ाव पर किसी न किसी रिश्ते को मैंने जिया भी है, निभाया भी है, और उनसे मुझे सच में प्रेरणा भी मिली है। कोई भी रिश्ता अगर सार्थक है तभी वो सच में रिश्ता होता है। ठीक है, आज का युग बदल गया है, आज शायद एकल परिवार के कारण परिवर्तन समय की मांग है ज़रूर, लेकिन आज भी दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ, दादी के नुस्खे हम भूले नहीं हैं, उनकी ज़रूरत आज भी हमें है। तो रिश्ते जो हैं वो संयुक्त परिवार की देन थे और एकल परिवार ने उन्हें बिखेर ज़रूर दिया है, लेकिन उन रिश्तों की अहमियत कम नहीं हुई।
बहुत सुंदर बात कही आपने। देखिए, समय बदल गया है, रिश्तों के लिए समय कम रह गया है, क्योंकि रिश्तों का स्थान आजकल बहुत सारी मशीनों में लोग बिजी रहते हैं। आजकल की हमारी युवा पीढ़ी मशीनों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताती है, तो शायद कहीं ना कहीं रिश्तों को निभाने के लिए समय नहीं रहता। चलिए जानते हैं शीमा फारूकी जी से, उनका क्या कहना है, क्या रिश्ते महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में?
बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं रिश्ते हमारी लाइफ्स में। और सविता सियाल जी, आपने एक बात कही कि हम लोग मशीनों के काफ़ी ज़्यादा करीब हो गए हैं, इसकी वजह से हमारे हाथों से रिश्ते छूट रहे हैं, जो कि बिल्कुल मैं आपसे एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि हमारे पास में टेलीफोन्स हैं, हमारे पास में इंटरनेट हो गया है, फेसबुक हो गया है, बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई हैं। मेरे हिसाब से तो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने रिश्तों की गहराई और ज़्यादा टाइटन कर दी है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज लाया है इन रिश्तों ने हमारे को एक दूसरे।
सीमा जी, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे मशीनों का, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस्तेमाल कर रही है बातचीत करने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए, लेकिन वो आजकल फ्रेंड से ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, बनिस्पत इसके कि किसी बुआ को फ़ोन करके पूछ लें या किसी कज़न से बात कर लें, वो अपने दोस्तों से बात
जी हाँ। लेकिन सविता सियाल जी, बात चल रही है रिश्तों की, और रिश्ते ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खून के ही हों, रिश्ते तो किसी भी तरह के हो सकते हैं। और ये तो अच्छी बात है कि इंसान में एटलीस्ट अभी तक इतनी डेवलपमेंट है, माइंड सेटअप इंसान का अभी तक इस हद तक चल रहा है कि रिश्ते बनाए रखें, चाहे फिर वो किसी भी तरह के हों। मुझे याद है कि मैं अपनी काफ़ी सारी कज़न से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो फॉरेन में रहते हैं, बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं, बाकी स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन जब से मेरे पास में एक स्मार्टफोन आया है या उनके पास में स्मार्टफोन्स हैं, तो हम लोग 24 घंटे एक दूसरे के साथ चैट कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने क्या खाया है, इन द सेम वे दे नो द सेम अबाउट मी। सो आई डोंट थिंक दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन एवर बी नॉट क्लोज टू आर रिलेशन।
सीमा जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे अब फॉरेन में बैठे कज़न से फेसबुक के थ्रू बातचीत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी बूढ़ी बुआ, बूढ़े चाचा या कोई ताया जी या मामा, इनसे कभी बात करने की कोशिश की है अपने मोबाइल से, या उनका मोबाइल नंबर भी आपको याद है या उनके घर का नंबर भी आपको याद है?
देखिए, याद तो मुझे अपना फ़ोन नंबर भी नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू वन थिंग दैट जो लोग मेरे करीब हैं, जो लोग मुझसे बात करते हैं, जिनसे मैं अटैच्ड हूँ, डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई एम इन टच विद देम। जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर है, आई टॉक टू हर एवरी सेकेंड डे, बल्कि दिन में दो बारी भी कभी मौका मिले तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ। इन द सेम वे मेरे ग्रैंड फादर। लेकिन जो मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं, जो कि मेरे चाचा ताया भी हैं, लेकिन जो क्लोज नहीं है, डेफिनेटली आई एम नॉट अटैच टू देम, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती तो मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद कहीं ना कहीं वो गैप तो डेफिनेटली आ ही गया।
शिवा जी, मैं आपसे एक और बात इसी से जुड़ी हुई पूछना चाहूँगी कि आप युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो बूढ़े चाचा ताया या बड़ी उम्र के मामा जी हैं, उनसे रिश्ता निभाना मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं? आप अपने हम उम्र कज़न से तो बात करती हैं, ठीक है, वो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन जो आपके बुज़ुर्ग रिश्तेदार हैं, जो आपके बड़े मामा जी होंगे या छोटे मामा जी, तो आपको नहीं लगता कि ये मम्मी पापा का डिपार्टमेंट है? ये ज़्यादातर युवा पीढ़ी यही सोचती है, और मैं सच बताऊँ, आज से कुछ वर्ष पहले मेरी भी ऐसी फीलिंग हो गई थी। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ी थी रिश्तों में जब तक मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं हुई थी, कि ये जो चाचा जी बुआ जी उनका हाल पूछना है ये मम्मी पापा का डिपार्टमेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए डिपार्टमेंट तो मम्मी डैडी का नहीं होता है, लेकिन देखिए एक जो फैमिली सेटअप होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि इंदिरा किलम जी ने पहले ही बताया कि हम न्यूक्लियर होते जा रहे हैं डे बाई डे, एंड यस चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन टूडेज वर्ल्ड एवरीबडी इज़ सो बिजी, हु हैज़ द टाइम फॉर एनी बडी फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर मुझे अपने चाचा के लिए टाइम नहीं है, ताया के लिए टाइम नहीं है, उनके बच्चों को भी मेरे फादर के लिए टाइम नहीं है, इट्स वाइस वर्सा। इन द सेम वे सी दे डोंट हैव टाइम फॉर अस, वी डोंट हैव टाइम फॉर देम, बट इट डजंट मीन दैट देयर चिल्ड्रन डू नॉट हैव टाइम फॉर देम, और आई डोंट हैव टाइम फॉर माई फादर। आई डू मेक श्योर दैट आई टॉक टू 10 टाइम्स इन अ डे टू माई फादर, आई एम ऑल द टाइम चैटिंग विद हिम। सो द रिलेशंस विच आर डिस्टेंट फ्रॉम यू वैरीज, वाइल एज द रिलेशन विच इज क्लोजर टू यू इज देयर। It's like one English saying is there, they say that the farther you are, the mind is as far from you. You know,
out of sight is out of mind.
Yeah, exactly. So it is the same thing. Exactly. Out of sight is out of mind. So that's exactly what happens with all of us.
Actually, अगर बात हम करें, जैसा कि आपने young या आधुनिक युग की बात करी है,
जी,
वास्तव में रिश्तों की अहमियत ये भी समझते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है, समझते हैं, लेकिन समय समय की बात होती है। वो अभी जितना उनके साथ अभी उनका अपने मित्रों के साथ उनका संबंध जुड़ा होता है उतना अभी शायद वो अपने खून के रिश्तों में शायद वहाँ पर उनमें दूरी थोड़ी आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ये एक साइकिल है, एक चक्र है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो फिर उनका झुकाव अपने रिश्तों की तरफ चला जाता है।
बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही इंदिरा जी ने कि जैसे जैसे आप, हो सकता है जब आप यंग हो तब आपको रिश्तों के लिए उतना समय ना मिले, या आप सिर्फ अपने नज़दीकी रिश्तों से ही बच्चे उन्हीं को समझते हैं,
और बच्चे जो है उनको जहाँ से प्यार मिलता है, जहाँ से देखभाल मिलती है, वो उनके साथ बंधन में बंध जाते हैं।
बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने कि ज़रूरी नहीं कि जो आपके घर में रहते हैं, अगर बचपन में आपको अपनी दादी से या अपने मामा से या अपने ताऊ जी से प्यार मिला है, तो जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ेंगे आपको उन रिश्तों की गर्मराहट ज़रूर याद आएगी, आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं इतना व्यस्त हो गया या मैं इतनी व्यस्त हो गई कि मैं अपने बूढ़े चाचा को भूल गई या बूढ़े मामा को भूल गई या अपनी दादी या नानी को भूल गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रिश्तों का महत्व है, हर रिश्ते का महत्व है, और मैं ये नहीं कहती कि अगर आपके ताऊ जी हैं तो उनके बच्चे ही उनको देखें। देखिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, हो सकता है आपके बूढ़े ताऊ जी का कोई बच्चा ना हो या बच्चा दूर रहता हो, तो भी उनके लिए समय निकालें, आप भी उनके बच्चों की तरह ही हैं। ये है रिश्तों की अहमियत, हर रिश्ता अपने आप में महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत ही रोचक चर्चा चल रही है और रोचक चर्चा का विषय है रिश्तों का महत्व। क्या 21वीं सदी में इस मशीनी युग में आज भी रिश्तों की अहमियत है? आज भी हम रिश्तों को महत्व देते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं? इस विषय पे हमारी डिस्कशन हो रही है। चलते हैं एक बार फिर कामनी जी के पास। कामनी जी, एक और प्रश्न है मेरा
जी,
इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ
जी,
कि रिश्ते क्यों टूटते हैं? आजकल कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हम खुशी खुशी निभाते हैं, कुछ रिश्ते हैं जिनको हम सिर्फ ढोते हैं, मजबूरी में ढोते हैं। क्या कारण होते हैं कि रिश्ते टूटते हैं?
सविता जी, जो आपने ये प्रश्न पूछा कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं
जी,
देखो मेरे हिसाब से या मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस या हम लोग जो समाज में देखते हैं, कई बार तो क्या होता है कि परिवार में एक फैमिली के पास, एक भाई के पास या एक बहन के पास बेशुमार दौलत आ जाती है
जी,
दौलत की वजह से भी कई बार रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। एक बहन बाय एयर जा रही है, दूसरा भाई बाय बस जा रहा है या बाय बस जा भी नहीं सकता, वो ये सोचता है कि मेरी बहन जो है या मेरा बड़ा भाई जो है वो मेरे उतना ही मेरे ऊपर खर्च करे जितना कि वो अपने ऊपर खर्च करता है, ये बात भी है। दूसरा कई बार क्या होता है कि रिश्ते में दूरी आती है, कहते हैं ना आंखों से दूर तो दिल से भी दूर
जी,
एक रिश्ता हमारे सामने है, हम उनसे कम्युनिकेशन करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, या कोई सुख है या दुख है वो हमारी अप्रोच में होते हैं, हमारे बजट में होते हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन कई बार हस्बैंड वाइफ वर्किंग होने की वजह से छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेला ना छोड़ के जाने से सिंगल फैमिली होने से भी कई रिश्ते टूट जाते हैं। मान लीजिए घर में किसी की शादी है, वहाँ हम नहीं जा पाते, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो हमारे फंक्शन में नहीं आते कि मेरी बहन या भाई मेरे रिश्ते में नहीं आया था, मैं भी नहीं जाऊँ।
तो कामनी जी, आप कहना चाहती हैं कि तीन कारण है आपके हिसाब से कि एक तो धन भी कई बार रिश्तों में कड़वड़ाहट ला देता है, एक रिश्तेदार बहुत अमीर है उसे लगता है कि मुझे गरीब रिश्तेदार की क्या जरूरत है, दूसरा पॉइंट आपने ये बोला कि कई बार ईगो आ जाती है बीच में कि आप मेरे को नहीं पूछ रहे तो मैं आपको क्यों पूछूं, इस तरह का, चाहे आपकी मजबूरी रही हो उनके यहाँ आप नहीं जा पाए उनके जी, तो इस तरह से। और स्वार्थ भी जो है मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, ये भी रिश्तों में बहुत ही कड़वड़ाहट लाता है
जी।
तो चलिए चलते हैं अब इंदिरा जी के पास। इंदिरा जी, आप बताइए कि आपके नज़रिए से रिश्तों में कड़वड़ाहट क्यों आती है, क्यों टूटते हैं रिश्ते?
सविता जी, मुख्य कारण तो यही है जो अभी आप लोग ने कहा, अहंकार है, स्वार्थ है, ये सब तो है। लेकिन अगर हम इसको इस धरातल पर देखें कि रिश्ते कई तरह के जो होते हैं, जैसे खून का रिश्ता अभी हमने डिस्कस किया
जी।
कुछ रिश्ते भावनात्मक होते हैं, उनकी जो टूटन या चुभन है वो क्यों होती है और कैसे होती है, वहाँ शायद धन दौलत सामने नहीं आता, आड़े नहीं आता, या अहंकार भी शायद आड़े नहीं आता
जी।
लेकिन कहीं ना कहीं किसी की कोई बात ऐसी आहत कर जाती है कि वहाँ रिश्ता रिश्ता ना रहकर, जैसा कि आपने अभी कहा, वो रिश्ता ही रहता है। और हम उस रिश्ते को ढोते रहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। अब देखिए, आप पति पत्नी का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता नहीं है
जी,
लेकिन ये रिश्ता सबसे प्यारा है और सबसे दूर तक जाने वाला है। कैसे, क्यों? कहीं विश्वास, प्रेम, समझदारी, यही चीज है ना जिसके आधार पर ये रिश्ता टिक सकता है।
और यही हर रिश्ते में चाहिए, ये तीन चीजें।
बिल्कुल, ये विश्वास प्रेम का जो आधार है ये बहुत जरूरी है, यही किसी रिश्ते को टिका सकता है। जहाँ विश्वास चरमराया, जहाँ एक दूसरे के प्रति संशय की भावना आई, वहीं रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। और जब ये रिश्ता टूटता है तो बहुत अधिक कसक, पीड़ा और व्यथा दे जाता है, जो मन को एक फड़फड़ाते हुए पक्षी के समान छोड़ देता है।
बहुत सुंदर बात कही आपने। चलते हैं शीमा जी के पास, और शीमा जी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। शीमा जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगी कि रिश्तों में कड़वड़ाहट क्यों आती है, रिश्ते क्यों टूटते हैं?
सबसे पहले तो सविता सियाल जी, आपको ये बात स्पेसिफाई करनी चाहिए, करनी पड़ेगी कि किस तरीके के रिश्ते की आप बात कर रही हैं, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक रिश्ता एक अलग तरीके से बना हुआ होता है। अगर दोस्ती का रिश्ता बना हुआ है तो उसमें अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, अगर माँ बाप के साथ में हमारा रिश्ता है तो उसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होंगे, एंड एट द सेम टाइम अगर अपने रिश्तेदारों की बात करें उसमें भी अपने स्पेसिफिकेशंस होंगे। स्पेसिफिकेशंस किस तरह के, कि अगर मेरा दोस्ती का रिश्ता है किसी से और दोस्ती में उसने दोस्ती नहीं निभाई या मैंने दोस्ती नहीं निभाई, तो जाहिर सी बात है रिश्ता तो टूटना है। इन द सेम वे अगर हम माँ बाप के साथ में, या माँ बाप की ही बात लेते हैं, अगर उनके साथ में हमारा रिश्ता है और मैं अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे। और अगर वो मेरे साथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं अपने जज्बात को, अपने किसी भी तरह के भाव को, तो जाहिर सी बात है मैं उनके साथ में रिश्ता तोड़ दूंगी। या फिर एट द सेम टाइम अब अगर हम अपने रिश्तेदारों की बात करें, तो सविता सियाल जी ने जैसे पहले ही कहा था कि एक बात उन्होंने कही थी जो मुझे सही नहीं लगी, उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा था कि क्या आप अपने रिश्तेदारों के पास में नहीं जाते हैं। मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि मेरे रिश्तेदार अगर मेरे पास नहीं आते हैं तो मैं उनके पास क्यों जाऊं, देयरफॉर रिश्ता टूट गया।
अच्छा नहीं शीमा जी, मतलब जैसे मान लीजिए उन्होंने नहीं निभाया रिश्ता, आपके रिश्तेदारों ने, आपके पास वो लोग नहीं आए, क्या आपका मन करता है कि आप उनके पास जाएं, या आप उस पुराने टाइम को याद?
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, एक एक बात तो ये है कि अगर हमारा पहले कभी रिश्ता रहा हो और फिर गैप्स आ गई हो, चलिए ठीक है, मैं आपके साथ में एग्री करती हूँ कि हो सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई माइट थिंक कि अरे कभी हमारा रिश्ता था, तो चलो
राइट
चल के मिल लेते हैं। लेकिन वो बात भी तब आएगी जब जज्बात उनके साथ में उतने ज्यादा जुड़े हुए होंगे।
बिल्कुल, मतलब कई बार क्या होता है कि फैमिली में कुछ लोग अब्रॉड चले जाते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्तों में दूरी आती है। तभी मैंने ये पहले ही कहा था कि आंखों से दूर तो दिल से दूर।
नहीं, और एक बात और है, खून के जो रिश्ते होते हैं ना माँ बाप के साथ, जो खास कर रिश्ता होता
है, मैं वही कहना चाह रही हूँ, वो नहीं टूट सकते।
ये बात कही जाती है कि पुत्र या पुत्री, अगर कुपुत्र हो कुपुत्री भी हो, फिर भी माँ बाप उनके साथ शायद अपना रिश्ता कहीं ना कहीं
बिल्कुल सही बात मैडम। मैं आपसे
माँ बाप का तो
बिल्कुल
जो रिश्ता है वो सहमत हूँ, वो तो उनका माँ की तो जीवन का शरीर का अंग है उसका बच्चा।
मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ आपने जो बात कही। तो फिर मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी आपसे मिसेस किलम कि तो फिर रिश्ता कैसे टूट सकता है, ये तो फिर सवाल हमें
नहीं,
पूछना
नहीं,
ही
देखिए कुछ रिश्ते होते हैं
मतलब रिश्तों में दूरी आ जाती है,
दूरी आती है बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी मैडम, क्योंकि दूरियां आ जाती हैं
बिल्कुल
दूरी आ जाती है, टूटता नहीं है रिश्ता। दूरी इस हिसाब से भी आ सकती है कि अगर बच्चा फॉरेन में जाके सेटल हो गया है अपनी वाइफ के साथ में, उसके अपने बच्चे हैं, तो फिर ऑब्वियसली गैप तो आ जाएगा माँ बाप और बच्चे के बीच में।
आजकल जो ये वृद्धाश्रम की जो बात चल पड़ी है ये शायद वही है कि रिश्तों में दूरी आ गई है, टूटता नहीं है क्योंकि खून का संबंध कैसे टूट सकता है।
इन द सेम वे कहीं कहीं पे ऐसा भी हो जाता है कि पेरेंट्स आर सो बिजी इन देयर लाइव्स दैट दे फॉरगेट दैट दे हैव अ चाइल्ड।
यस यू आर राइट,
therefore there can be a gap but the relations do not break।
yes।
तो श्रोता आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो इस डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं सबका अपना एक व्यू पॉइंट है, सब रिश्तों को अपने नजरिए से देखते हैं। और मैं मिसेस किलम से सहमत हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें चाहे थोड़ी देर के लिए कड़वड़ाहट आ जाए लेकिन वो रिश्ते सदा हमारे साथ रहते हैं, जैसे माँ बाप और बच्चों का रिश्ता, या बच्चे माँ बाप से नाराज हैं, या किसी कारण बेटे ने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो फादर जो है थोड़ा सा खफा हो सकते हैं लेकिन वो अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करेंगे, उस रिश्ते को वो मरते दम तक निभाएंगे। देखिए रिश्ते फिर वही बात आ जाती है, रिश्ते टिकते हैं प्यार, विश्वास और सहनशीलता और निस्वार्थता, ये चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है रिश्ते निभाने के लिए। और देखिए समय बदल गया है, प्रतियोगिता का युग है, लेकिन तो भी जो हमारे रिश्ते हैं वो हमारे जो बुज़ुर्ग रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं हमारी और देखते हैं कि बच्चे हमारे लिए समय निकालें। तो मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके पास मोबाइल है, आपका बहुत सर्कल है, आपके पास अपना प्रोफेशन है, फिर भी कभी ना कभी आपके जो रिश्तेदार हैं उनके लिए समय निकालिए, कभी उनका हाल भी पूछिए, समय अवश्य निकालें। रिश्तों का अपना महत्व है और हर रिश्ते का अपना महत्व है। तो मैं चलती हूँ कामनी सिंह जी के पास। कामनी जी मेरा एक और प्रश्न है कि क्या खून के रिश्ते ही रिश्ते होते हैं या उसके अलावा भी कभी किसी व्यक्ति से इतना सुंदर रिश्ता बन जाता है जो कि खून के रिश्ते से भी बढ़ के आपकी सहायता करता है, आपके काम आता है। मैंने ऐसे बुज़ुर्ग भी देखे हैं कि जिनके किराएदारों का बेटा उनके बेटे से ज़्यादा उनकी सेवा की उन्होंने उस समय काम आया जब उनका अपना बेटा उनके पास नहीं था। तो क्या इस रिश्ते को आप क्या नाम देंगे? और मैं एक और इसके साथ ही हमारे डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर गंभीर, वो बहुत सुंदर एक इस पर शेयर कहा करते हैं कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है, तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है, कहने को कोई नाम नहीं सबसे करीब रिश्ता है। तो आप सहमत हैं कि खून के रिश्ते के अलावा भी दुनिया में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं?
सविता सियाल जी मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कई रिश्ते अपने खून से भी गहरे और गाढ़े होते हैं
जी।
उन रिश्तों का नाम नहीं होता, उनका नाम इसलिए नहीं होता कि हमारी संस्कृति ऐसी चली आ रही भी कुछ रिश्ते हैं जिन्होंने हमारी मदद की। हम क्या करते हैं अपने रिश्तेदारों से बेशुमार उम्मीद रखते हैं,
इसीलिए रिश्तों में कड़वड़ाहट
जी। तो जब हम इतनी उम्मीद रखते हैं कि देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, या मैं किसी की बेटी हूँ या मैं किसी की बहू हूँ, तो उसके लिए मुझे करना ही करना है, वो हमारी एक ड्यूटी बन जाती है। उसको हम जैसे कहते हैं हम ढोते भी हैं और हम करते भी हैं और हम रोते भी हैं
जी।
लेकिन जब हम बिना खून के रिश्तों से जुड़ते हैं, किसी से अपनेपन से जुड़ते हैं, उसमें हम उम्मीद नहीं करते, इसीलिए वो टूटते नहीं हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं करते और हम एक से बढ़कर एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए ये किया, देखो ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, इसका मेरा कोई खून से रिश्ता नहीं था, इसलिए इसने मेरे साथ दुनिया से हटके मेरी मदद की है, वो हमें ज़्यादा प्यारा लगने लगता है, हम उसके लिए ज़्यादा करने लगते हैं और अपने खून के रिश्तों से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन कहते हैं खून उबाल जरूर मारता है,
बिल्कुल बहुत सही कहा आपने,
खून को खून पुकारता है। ये मेरे साथ बीता भी हुआ है और मैं इस चीज़ का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखती हूँ। कुछ भी हो, दोस्त भी आते हैं, मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा अपने पड़ोसी से बनी हुई होनी चाहिए। जो सबसे पहले आपका मददगार होता है वो हमारा रिश्तेदार नहीं होता, लेकिन अपने हर रिश्ते को हमें समझदारी से बना कर रखना चाहिए, चाहे वो खून का रिश्ता है चाहे वो बेगाने हैं, लेकिन सबके साथ एक अपनापन होना चाहिए जिससे हमारे भारत की संस्कृति और हमारे संस्कार आगे जाएं। लेकिन जो रिश्ता आपको सदा दुख दे, मेरे व्यूज से उस रास्ते से अलग हट जाना चाहिए।
हाँ, कामनी सिंह जी का कहना है कि जो रिश्ता आपको सुख दे उस रिश्ते से आगे बढ़े, उस रिश्ते के साथ चलें, और ज़रूरी नहीं खून के रिश्ते ही आपके काम आए, मुसीबत पड़ने पर जिनसे आपका खून का रिश्ता भी नहीं है वो भी आपके काम आ सकते हैं। तो अब चलते हैं इंदिरा जी के पास, उनका इस विषय में क्या कहना है।
देखिए, अभी आपने ये कहा कि क्या जो रिश्ते हैं वो सिर्फ खून के रिश्ते ही हो सकते हैं? नहीं, खून का रिश्ता तो है जो हमें जन्म से मिला है, वो हमें जन्म से प्राप्त है, वो जो रिश्ता है वो जन्म से मिला, वो हमें, हम उसको तोड़ें या जोड़ें वो हमारे बस में नहीं है क्योंकि वो हमें मिल चुका है। लेकिन जहाँ मन का मन से मेल हो जाए, जहाँ मन मन से जुड़ जाए, वहीं एक रिश्ता कायम हो जाता है। आप किसी की मदद करते हैं, कौन सा रिश्ता है? मानवता का रिश्ता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए मानवीय रिश्ता बहुत ज़रूरी है। और उस मन को जोड़कर जब हम उस रिश्ते को बनाते हैं, वहाँ हमें कुछ चाहिए, वहाँ चाहिए त्याग, समर्पण और निस्वार्थता।
बस
जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आपका रिश्ता निभ नहीं पाएगा। ये मत सोचिए, अहम को कभी आड़े मत लाइए, ये मत सोचिए उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर, मन के बल पर जीवन को जीता।
हाँ, इंदिरा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो चेकबुक कल्चर वाले रिश्ते होते हैं कि उसने उन्हें आपको फेवर की, आपने उसके बदले में उनको कर दी, तो इस तरह के रिश्ते ज़्यादा दूर नहीं जाते। आप निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करें, मन से रिश्ते जोड़ें।
ये अनाम रिश्ते हैं,
बिल्कुल
अनाम रिश्ते हैं, पर हैं ये रिश्ते।
बिल्कुल, आपका मन मिले उससे जो रिश्ता है वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत रिश्ता है, वो चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो या नहीं। चलिए चलते हैं सीमा जी के पास कि वो क्या कहती हैं कि क्या खून के रिश्ते ही महत्वपूर्ण होते हैं, या खून के रिश्तों के अलावा जो और रिश्ते होते हैं वो भी रिश्ते कहलाए जा सकते हैं जो आप जोड़ते हैं अपने यहाँ कर।
इस बात का जवाब तो वैसे आप सब लोग खुद ही दे चुके हैं कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते हैं, और मेरे हिसाब से तो अगर मेरा माइंड सेटअप देखा जाए तो मेरे लिए तो रिश्ते वो हैं जो मेरे करीब हैं।
बहुत खूब
जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले ही कहा चाचा ताया, उनको तो मैंने देखा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे अजीज़ हैं, मेरे करीब हैं, और उनके लिए शायद मैं कुछ भी कर सकूं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकें। और साथ ही साथ जो रिश्ते मैंने बनाए हैं, जो मेरे पे थोपे नहीं गए खून के ज़रिए, वो रिश्ते जो मैंने खुद बनाए हैं, अपनी सोसाइटी में बनाए हैं, अपने दोस्तों के साथ में बनाए हैं, या कुछ ऐसे लोगों के साथ में बनाए हैं जिनके साथ में मुझे पता भी नहीं कि रिश्ता क्यों जुड़ा है, शायद रिश्ता उसी को कहते हैं कि एक दूसरे के साथ में एक
जोड़
हो जाता है, उसे रिश्ता कहते हैं। अब ये जोड़ ज़रूरी थोड़ी है कि खून का हो।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक,
ये रिश्ता तो कागजी भी होता है, जब पति पत्नी एक कागज पे साइन कर देते हैं और पति पत्नी हो जाते हैं, या फिर ये रिश्ता तो कुछ भी किसी भी चीज से, किसी भी डोर से भी नहीं जुड़ा हुआ होता, जब दो दोस्त एक दूसरे के साथ में करीब रहते हैं। ये रिश्ते यही हैं जो खून से ही नहीं हर एक चीज से बंधे हुए होते हैं, बंधना जरूरी है, शायद जो बंधन होता है उसे रिश्ता कहते हैं। खून से जुड़े हुए लोगों को रिश्तेदार नहीं कह सकते,
और इस बंधन में एक दूसरे के लिए जगह होनी चाहिए,
बिल्कुल,
एक दूसरे को समझने की
इमोशंस होनी चाहिए,
भावनाओं के साथ जो जुड़ता है,
बिल्कुल सही,
वही वास्तव में रिश्ता,
बिल्कुल।
अच्छा, एक सुंदर बात और बात होती है कि कई बार हम कहते हैं कि हमारा दोस्त बड़ा अहंकारी है, बड़ा सेल्फिश है, फिर भी हम उसकी बात को मानते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं चाहे वो गलत हो।
तभी तो आपने कहा ना कामनी जी कि मेरा दोस्त बड़ा अहंकारी है, क्योंकि वो आपका दोस्त तो है ना, इसलिए आप उसका रिश्ता नहीं तोड़ सकते।
मैं तोड़ नहीं सकती क्योंकि दिल से मजबूर है।
बिल्कुल,
मन की दूरी मत बढ़ाइए, मन को करीब रखिए।
तो श्रोताओ, आपने देखा कि रिश्तों के विषय में सभी के अपने विचार हैं, सभी का अपना एक दृष्टिकोण है, और जैसा कि मेरी मित्र इंदिरा किलम जी ने कहा और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मानवता का रिश्ता सबसे ऊंचा है। देखिए, आप खून के रिश्ते ज़रूर निभाएं, लेकिन मानवता का रिश्ता भी ना भूलें और अपने रिश्तों को जितना निभा सकें। रिश्तों से दुनिया सुंदर बनती है और रिश्तेदारों से अपेक्षाएं कम रखें, रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश करें और उसके लिए आपको निस्वार्थ भाव से सभी रिश्तों को निभाना आना चाहिए। मन से जुड़ें रिश्ते और अधिक से अधिक उसमें मधुरता लाएं और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके रिश्तों की खूबसूरत दुनिया से जुड़े रहें। यही संदेश है हमारी आज की इस डिस्कशन का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमारे साथ बांटे।
शुक्रिया, धन्यवाद,
शुक्रिया जी।